राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में रहे, यदि वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है तो कभी भगवान से अलग नहीं है। सीता जी को रावण चुरा ले गया, जबरदस्ती ले गया, विलाप करती करती सीता को उसने अशोक वाटिका के नीचे रख दिया, परंतु सीता जी राम जी के ध्यान में बैठी हुई है और रटती रहती हरिनाम, भगवान का नाम ले रही है और भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रही है। भगवान के स्वरूप का ध्यान और भगवान का नाम, ये दोनों क्या है? ये मन से और वाणी से, कर्म से, भगवान से जुड़ा रहना है। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये तो भगवान का ध्यान किया। सोच छवि सीता राखी उर, भगवान की छवि को सीता जी ने अपने हृदय में रखा और रटती रहती हरि नाम। इधर अपने लक्ष्मण को अपनी तरफ आते हुए देखा तो भगवान ऊपर ऊपर से चिंता करते, अरे लक्ष्मण कैसे आ गए, सीता को तुमने अकेला छोड़ दिया, मेरी बात का उल्लंघन कर लिया, आज्ञा का उल्लंघन कर लिया। आज तक तुमने कभी मेरी बात का उल्लंघन नहीं किया, आज पहली बार ऐसा हुआ है। लक्ष्मण क्या बात है, क्यों आए? तुम्हारे मुंह पर भी बहुत उदासी है। अरे लक्ष्मण देखो, निशाचरों का समुदाय जंगलों में फिरता रहता है, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि अपने आश्रम में सीता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रोते हुए लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे, महाराज कहो नाथ कछु मोहिन खोरी, मेरी कोई इसमें कमी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज ये नहीं बताया क्या क्या कहा अभी, यह नहीं बताया, इतना ही कहा कहो नाथ कछु मोहिन खोरी। अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आया है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे इतने इतने जले कटे शब्द कहे महाराज, बहुत अप्रिय शब्द कहे, अप्रिय भी कोई बात नहीं है, इतना ऐसे शब्द कहे कि उन शब्दों को सुनने के बाद तो मैं वहां रह ही नहीं सकता था। तब भी राम जी ने कहा नहीं नहीं क्या हो गया, बोल दी तो बोल दिया, तुमको यहाँ रहना चाहिए था। गोस्वामी जी महाराज ने इतना नहीं कहा है, इतना ही कहा है कि महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। अब जो है लक्ष्मण जी रोने लगे, भगवान लक्ष्मण को लेकर के गोदावरी के उस आश्रम पर आए और सीता जी को ढूंढने लगे। सीता जी दिखे नहीं। तो जैसे एक मामूली आदमी स्त्री के लिए विलाप करता है, ऐसे वो विलाप करने लगे। हे गुणों की खान, हे सीते, हे रूपशील व्रत में पुनीत रहने वाली सीते, तुम कहाँ गए? एक पागलों के समान कभी लताओं से पूछते हैं, कभी वृक्षों से पूछते हैं। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे भौरों, क्या तुमने सीता को देखा है? कभी खंजन पक्षी को देखते हैं, सूक्ष्म कपोत मृग मीना एक एक पक्षी से पूछते हैं, क्यों ये चुन चुन करके लिए, क्यों जी? ये क्या मतलब है? मृग को पूछने का अर्थ है कि मृग के समान तेरे समान उसकी आंख थी। और कुंदकली, कुंदकली वृक्ष होता है, उसको देख करके कहा कि वो क्या है, उसका फल सफेद होता है। तो ये दांत होते ना सफेद, तो इनको देख करके सीता जी के सफेद दांतों का स्मरण होता है। और शरद ऋतु में कमल एकदम अच्छा खिला ताजा सा रहता है, ऐसे सीता के मुख पर हरदम ताजगी और प्रसन्नता रहती थी। और गज के हरी हाथी के समान चलने वाली थी, और सिंह के समान वो पराक्रमी थी, हंस गवनी थी। ऐसे एक एक पशु पक्षी वृक्ष लता आदि का नाम लेकर के वो बोलते इसलिए है कि सीता जी की विशेष याद आए, सीता जी के अंग याद आते हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी उनको तरह तरह से समझाते हैं, लक्ष्मण जी समझाते हैं। अब देखो, यदि राम जी महाराज सीता जी को अग्नि में प्रवेश नहीं कराते तो लक्ष्मण जी के सामने जो कुछ रोना हो रहा है, ये लक्ष्मण जी कहते क्यों रोते हो कि ये तो सब मायावी सीता है, क्या हो गया, अच्छी चली गई चली गई, असली सीता तो गई ही नहीं। तो भगवान की लीला सब धरी रह जाती, लक्ष्मण जी कोई परवाह ही नहीं करते। और फिर लक्ष्मण जी वहां से जाते ही नहीं, पहली बात तो ये सब लीला बंद हो जाती कुल मिलाकर के। ये है तो लक्ष्मण जी को पता नहीं था ना, इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमारी तो असली सीता ही गई, ये नकली सीता ये नहीं है, ये तो असली नकली का भेद ही मालूम नहीं था उनको। राम जी चिल्लाते, अरे सीते, तुम्हारे बिना आज ये सब के सब दुनिया में पशु पक्षी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि देखो हाथी देखता है कि मेरी चाल थी, मेरी चाल से बढ़िया चाल एक सीता की थी, अब सीता चली गई, अब तो मेरी प्रशंसा होगी। हंस देखता है कि जैसे मैं यूं चलता हूं, ऐसे एक सीता मेरे से बढ़िया चलती थी। कमल देखता है कि मैं ही ताजा हरा भरा प्रसन्न रहता हूं, ऐसे एक एक जो है ये पशु पक्षी आनंदित हो रहे हैं। राम जी कहते हैं हर्षे सकल पाई जनु राजू, देखो सीते तुम्हारे बिना सब कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। इनकी स्पर्धा किमि सही जात अनख तो ही पाई, अरे सीता तुम प्रकट हो जाओ ना, ये पशु पक्षी आदि जो आनंदित हो रहे हैं इनको देखकर तुम्हारे मन में स्पर्धा नहीं आती कि किस बात की तुम अपने आप के अंदर अभिमान की भावना लाते हो, मेरे समान है कोई, तुम आओ ना जल्दी प्रकट हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से राम ऐसे विलाप करने लगे मानो राम जी तो अत्यंत कामी पुरुष होंगे। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि पढ़ते पढ़ते कोई आदमी राम जी में दोषारोपण नहीं करे तो एक बहुत बढ़िया चौपाई दे दी, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान पूर्ण काम है और संपूर्ण आनंदों के स्वरूप है, उनका आनंद उनका सुख कोई दूसरे पर अवलंबित नहीं था, ये तो केवल एक मनुज चरित्र कर रहे हैं बस। ऐसे चलते चलते आगे गीद को देखा और वो गीद एकदम बस मरणासन्न था, घायल हुआ वह, और राम 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 ऐसे विलाप कर रहा था। और विलाप भी क्या कर रहा था, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों की रेखा का स्मरण कर रहा था वो। अब कहते हैं राम जी के चरणों की रेखा को क्यों याद कर रहा था जी, राम जी के चरणों को क्यों नहीं ले? तो देखो उसकी आंखें थी इस समय बुझ रही थी, बहुत कम दिख रहा, आदमी मरने लगता है तब उसको सुनाई भी कम देता है और उससे बोला भी बहुत धीरे जाता है, देखने भी उसके कम ही दिखता है। तो उसने कहा ये आंख है इससे कम दिखता था ना, तो ये पतली सी रेखा बस राम जी के चरणों की रेखा का ध्यान करता था, रेखा पतली होती है। राम जी अरे गीतराज जी की ये दशा, भगवान वहां पास में बैठे और उसकी जो ये गर्दन थी वो पंख टूटे हुए और ये गर्दन भी आधी कटी हुई थी, लेकिन भगवान ने अपने गोडे पर उसके शरीर को रखा, उसके हाथ के ऊपर स्पर्श करके उसको सहलाया और सहला करके और के क्या हुआ गीतराज जी, क्या हुआ आपके, क्या हुआ? उस समय राम जी का जो कोमल स्पर्श मिला और मधुर वाणी मिली, उससे गीतराज के मन में बड़ी शांति मिली और धैर्य धारण करके कहने लगा हे राम, आप तो सारे संसार का भय दूर करने वाले हो, आवागमन की पीड़ा को दूर करने वाले हो प्रभु, मेरी ये गति दशानन की है। देखो यहाँ रावण नाम नहीं ले रहा है, रावण नाम क्यों नहीं ले रहा है कि वास्तव में गीतराज ने रावण बोल करके उसको कल रावण नहीं कहा था, वो रुला रहा था इस अर्थ से रावण बोला। ऐसे ही दशानंद जो नाम दिया है ये दस मुख के कारण से कहा, इसने परिचय दे दिया कि वो दशानंद था, दस मुख वाला था, उसने ये गति की है और उसी ने सीता का हरण किया है प्रभु, और वो दक्षिण दिशा में गया है। ओहो सीता ने जैसे कोई कुर्री विलाप करती ऐसा हृदय विदारक विलाप किया था महाराज, ये तो कोई आपकी कृपा से मैं बच गया, मेरे प्राण बच गए। देखो ये नहीं कहा कि मैं उसको छुड़ाने के लिए खूब लड़ा, कुछ नहीं कहा, दरस लागी प्रभु राखें प्राणा, आपके दर्शनों के लिए मेरे प्राण अटके हुए थे, अब महाराज मैं चलना चाहता हूं। राम जी महाराज की आंखें छल छला गई। राम जी ने कहा कि जटायु जी आपको अपना शरीर रखना चाहिए। अब देखो राम जी महाराज एक तरफ तो विबल भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ राम जी महाराज मुस्कुराते हुए मुख चाहिए, राम जी को मुस्कुराते हुए बोलता है जटायु। राम जी ने कहा कि अरे थोड़े शरीर को रखो, आप थोड़े दिन रखो, हमारी सहायता करो, कुछ रखो। तो मुख मुस्काए कही तही बात, इतनी देर तो बेचारा कर रहा था, कितनी मुस्कुराहट आई उस गीतराज पर, और कहने लगा महाराज जाकर नाम मरत मुख आवा, जो मरते मरते आपका नाम ले लेता है वो चाहे कितना भी अधम प्राणी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, मरते समय में जो आपका नाम लिया जाए वो बहुत कीमती होता है। लोग सोचते होंगे कि मरेंगे तब ले लेंगे, अभी फालतू क्यों राम राम करें, दूसरी बातें सही, पर एक बात है कि मरते समय में राम नाम उसी के ही आता है जिसने पहले राम नाम लिया है। मरते समय में और रात को नींद आते समय में एक जैसी अवस्था होती है। अब रात को आप सोते हैं तो आपको पता थोड़ी चलता है कि अब नींद आ रही है, नींद आई जाती है, बड़े बड़े सोते सोते बातें कर रहे हैं नींद आ जाती है, पता नहीं चलता है अब कोई नींद आ रही है, जैसे कोई आदमी आवे तो पता चले। तो जैसे नींद का पता नहीं चलता ऐसे मौत का भी पता नहीं चलेगा हो कि अब मौत आ रही है कि क्या हो रही है। तो मरते समय में राम वही ले सकता है कि जो जागृत अवस्था में जीते जी भगवान का नाम लेता हो, जिसके जीवा पर अभ्यास हो, वही राम 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 राम। तो इसका अभ्यास कहां से करना चाहिए, सोते समय में बिस्तर पर जाकर सो गए ना, उस समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और उठते ही भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। ऐसे नाम स्मरण करने से मृत्यु अवस्था में भगवान का नाम उसके आ ही जाता है। और यदि ऐसे सोचोगे कि भाई मृत्यु अवस्था में हम नाम ले लेंगे तो कोई दूसरा सुनाएगा भी तो भी कह देंगे बंद करो ये अल्लाह गुल्ला बंद करो। उम्र भर जिसने नाम नहीं लिया है उसके पास कोई भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति नाम लेगा भी तो वो मना कर देगा कि नहीं नाम मत लो हमारे सामने, ये दुर्भाग्य की बात है। जाकर नाम मरथ मुख आवा अधमहु मुक्त होई श्रुति गावा सो मम लोचन गोचर आगे। आप वो मेरे सामने खड़े हैं महाराज और आप कह रहे हो ये शरीर रखो, मैं शरीर को रखूं कि आपकी याद को रखूं? मैं क्या समझ करके शरीर को रखूं? मेरे इस समय क्या कमी है दोगा मैं शरीर को रखूंगा? शरीर को रख करके क्या होगा महाराज? इस शरीर का उपयोग तो आपका स्मरण करने में ही है ना, वो स्मरण मेरा हो रहा है। देखो अपने शरीर में भयंकर बीमारी हो उस समय में डॉक्टर वैद्य कह देंगे भाई अब आपके शरीर का पता नहीं कब चला जाए, तो शरीर स्वस्थ कैसे हो इसके लिए इतना इतने घबराहट नहीं होनी चाहिए, भगवान के नाम स्मरण में भगवत चिंतन में लगना चाहिए। इसका अर्थ ही नहीं उपचार न करें, दवाई पानी उपचार सब करें, लेकिन उपचार में जितना प्रयत्न करते हैं उससे ज्यादा प्रयत्न अपने को भगवान के स्मरण में करना चाहिए। क्योंकि उपचार आदि से तो वही शरीर रह ही जाएगा, जरूरी थोड़ा ही है, पर भगवान का नाम स्मरण में जो भाव रहेगा, भगवत स्मृति में जो चीज रहेगी वो तो हमारे आगे भी काम आने वाली है। तो राखो देह नाथ कई खांगे, खांगे माने क्या कमी है महाराज, अभी मेरे क्या कमी है, शरीर जाए जाए आपका स्मरण हो रहा है आपकी याद आ रही है तो मुझे तो कोई शरीर को रखने में कोई कमी का, शरीर के जाने में कोई कमी का अनुभव नहीं हो रहा है महाराज। भगवान जल भर नयन लेते आंखों में जल लाते हुए कहते हैं कि हे तात, तात कहते हैं अपने बाप को, तो ये बाप के समान मानते थे भगवान। हे तात तुमने जो गति प्राप्त की है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, तुमने अपने कर्म से कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। जिस आदमी के मन में दूसरे के हित का निवास होता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है, इसलिए जाओ तुम मेरे धाम में जाकर निवास करो, तुम पूर्ण काम हो, तुम्हारे कोई कामना नहीं। अच्छा पूर्ण काम तो क्या है, अभी कामना तो थी ना कि सीता जी की मुक्ति चाहता था, सीता जी का दुख दूर करना चाहता था, कहते हैं सीता जी का दुख दूर करना चाहता था ना, अपने लिए कोई कामना नहीं थी, इसलिए कहा देव कहा तुम पूर्ण काम, तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें क्या दे सकता हूँ, एक काम तुम जरूर करना। बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने, सीता हरन तात जनी कहु पिता सन जाय, जो मेरा मत कुल सहित कहि दसानन आम। देखो आप मेरे पिता के लोक में जाओगे इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान की भक्ति करने वाले भगवान के विरह में प्राण त्यागने वाले पिता के पास भगवान के लिए सेवा करने वाले भगवती सीता के लिए युद्ध करने वाले गीतराज भी उसी जगह पर जाएंगे, दोनों में भगवान की भक्ति है, दशरथ जी महाराज में भी और गीतराज में भी। तो आप जाओ तो गीतराज जी दशरथ जी से ये मत कहना कि सीता का हरण हो गया और मैं रावण से युद्ध करता रहा और उसमें मुझे उसने घायल कर दिया और फिर मैं मर गया, ऐसी जाकर के बात मत कहना। तो मिलेंगे दशरथ जी तो बात तो चलेगी, अरे आप क्यों कहो, तो यदि उनका बेटा राम हूं मैं तो कुल सहित दशानन भी उसी लोक में जाएगा, उसी लोक में, और जाकर के दशरथ जी से कहेगा दशरथ जी आपका बेटा राम तो बड़ा बलवान, बड़ा श्रेष्ठ और देखो बड़ा कृपालु है कि आपके पास हमको पहुंचा दिया है। हमारा कुल भी देखो यहाँ आ गया, ये राम का बड़ा पौरुष है, राम की बड़ी कृपा है। सब बात दशानन कहेगा, रावण कहेगा, मैंने सीता का हरण किया उन्होंने मुझे मार के यहाँ भेजा। ये जाके आप मत कहना। आप देखिए भगवान की दयालुता कि भगवान में प्रेम रखने वाले राम दशरथ जी महाराज जिस लोक में जाए, सीता जी के लिए प्रेम रखने वाले गिरिराज जी जिस लोक में जाए, उसी लोक में राम जी से बैर करने वाला, सीता जी का हरण करने वाला, राम जी से बैर करने वाला, राम जी पर शस्त्र चलाने वाला रावण भी कुल सहित वहां जाएगा। कितनी बड़ी राम जी की ये उदारता है। पूतना को भी भगवान ने मुक्ति पद दिया। इसलिए वहां प्रेमी भक्त बोलते हैं भगवान से कि हे महाराज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है, मुक्ति है ना, तो मुक्ति तो आपने पूतना को दे दी, आप यशोदा को क्या दोगे बताओ, यशोदा को क्या दोगे। भगवान चुप हो जाते हैं। ऐसे भगवान दयालु है। भगवान हमारे आचरणों को, हमारी क्रियाओं को नहीं देखेंगे, वो भगवान तो हमारे भाव को देखने वाले हैं। इसलिए भाव बदलने में हम लोग बहुत स्वतंत्र और समर्थ हैं। दशरथ जी महाराज को ये संदेश जाकर के मत देना। अब देखो दशरथ जी मरे तो हमारे जैसा ही शरीर पड़ा रहा उनका, लेकिन गीद देह तजी धरी हरि रूपा। जब गिरिराज ने ये शरीर तो छोड़ दिया, इसमें से भगवान का ही स्वरूप निकला है। क्यों भाई, दशरथ जी का क्यों नहीं ऐसा शरीर दिव्य चतुर्भुज रूप बना। दशरथ जी भी तो राम 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 करते हुए मरे थे और गिरिराज भी तो ऐसे ही मरे हैं। गिरिराज जी के शरीर में इतनी दिव्यता क्यों आई कि देखो गिरिराज ने भगवती सीता के सेवा में अपने शरीर की हानि हो गई ना, तो क्षत विक्षत हो गया, यहाँ से कट गए पांख, कट गए कुछ गड़ा कट गया और शरीर कैसे ही हो गया, राम जी के लिए हुआ ना। तब भगवान ने कहा जो मेरे लिए मरता है उसको मैं कैसा शरीर देता हूँ। गीद ते देह तजी धरी हरि रूपा। दशरथ जी महाराज में भगवान में प्रेम था और गिरिराज में प्रेम तो था ही, लेकिन अपने शरीर को और लगा दिया। तब गिरिराज जी भगवान के ही शरीर को प्राप्त हो गए। भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरिवारी। भगवान का पार्षद होता है, देखो भगवान का पार्षद और भगवान इनके एक जैसे शरीर होते हैं। बस दो चीजों में फर्क है, भगवान के कौस्तुभ मणि होती है और एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। बस ये दो चिन्ह है भगवान में होते हैं, पार्षदों में नहीं होते। चतुर्भुज रूप वैसा ही होता है, श्याम शरीर वैसा ही होता है, मुकुट की चमक भी वैसी होती है और बाकी सब कुछ वैसा ही होता है, पीताम्बर वगैरह। लेकिन कौस्तुभ मणि वगैरह वो केवल भगवान के होती है, मणि और श्रीवत्स का यहाँ चिन्ह होता है, सात का चिन्ह। अस्तु श्रीवत्स का चिन्ह, श्री माने लक्ष्मी। भगवान को जब लक्ष्मी जी प्रणाम करती थी तो स्नेह के कारण से भगवान लक्ष्मी जी को यहाँ अपने वक्षस्थल के लगाते थे, तो लक्ष्मी जी का यहाँ सिर टिकता था, तो टिकते 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 यहाँ एक चिन्ह हो गया, उसको श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं। वो किस बात का द्योतक है कि भगवान सबको अपने प्रेमी लोगों को गले लगाने के लिए तैयार है, उस बात का द्योतक है। अस्तु अब गीद ने भगवान की बड़ी स्तुति गाई, भगवान की निर्गुण सगुण सब प्रकार से स्तुति गाई। क्या कहा, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। आपको निर्गुण कहा जाता है तो वो भी सही है, सगुण कहा जाता है कि वो भी सही है, और आपको गुणों का प्रेरक कहा जाता है कि आप तो केवल गुणों को प्रेरणा देते हो, वो भी सही है। आप दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, आप तो महाराज बदलों के समान श्याम। अब देखो बदल के समान आप जो है जल भरे हुए बदल के समान श्याम वर्ण वाले, और सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, ये बड़ी विचित्र बात है। कमल के समान मुख है और कमल के समान ही नेत्र है। अब कमल के समान इतना बड़ा मुख बता दिया तो फिर अलग नेत्र क्या रह गया, इसको फिर अलग कमल के समान बताया। कमल में दो बातें होती हैं, एक तो होती है कमल का यूं खिलाना, खिला होना, चाहे यूं खिला रहता है, उसके पंखुड़े यूं खिले रहते हैं, ऐसे आपके मुखारविंद पर अपार प्रसन्नता रहती है। एक कमल का फूल होता है उसमें लालिमा होती है, लाल रंग के पत्ते होते हैं लाल, तो ये नेत्रों के अंदर ललाई रहती है। ये ललाई क्या बात बताती है, भगवान के प्रेम को बताती है। लाल रंग होता है ये प्रेम का प्रतीक होता है, सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। हर रंग अलग अलग प्रतीकात्मक होते हैं। पीला रंग होता है ये ज्ञान, ये पीला रंग होता है ये साधन भजन का रंग होता है। इस प्रकार से अलग अलग रंग होते हैं। भगवान पीतांबर क्यों पहनते हैं, पीला पीला इसलिए पहनते हैं साधन भजन को भगवान स्वीकार करते हैं। तो सरोज मुख और राजीव लोचनम, खूब बढ़िया भगवान की उन्होंने स्तुति गाई और कह दिया कि जो राम रूपी मंत्र का सदा जाप करते रहते हैं ऐसे संतों के हृदय में आप आनंद उड़ेलते रहते हैं। देखो राम मंत्र का है, राम मंत्र माताएं बहनें क्या करती हैं कि कोई मंत्र बता दो, ज्यादा तो माताओं बहनों को होता है कोई मंत्र बताओ, और बताइए राम नाम मंत्र है ना, सीधा ही ये राम नाम मंत्र है, ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है, किसी बेकाड़े में नहीं आना। कोई कहे साहब ये मंत्र बताएंगे तुम्हारे ये धन हो जाएगा, तुमको ये मंत्र बताते हैं तुम्हारे ये बीमारी दूर हो जाएगी, तुमको ये मंत्र बताते हैं तुम्हारा व्यापार ठीक चलेगा, ये सब बातें राम मंत्र के सामने सब गौण है, मुख्य है राम मंत्र। राम मंत्र जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनम। महाराज मेरे लिए तो आश्चर्य है कि मेरे जैसे आदमी के सामने आपने ऐसी कृपा की। महाराज आप महाराज बड़े बड़े योगी लोगों के हृदय में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं और आप मेरे सामने कैसे प्रकट हो गए। अब पता चला कि महाराज आप दीनानाथ हो, अनाथ नाथ हो, गरीबों को आप चाहने वाले हो। महाराज मम उर बसव सु समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। अब एक ही प्रार्थना है कि आपका प्रेम मेरे हृदय में सदा बसता रहे ताकि संसार के आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाए। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, संसार में आने जाना। बड़ा दुख होता है गर्भावस्था से, दुख होता है गर्भ में ऊंधा लटका रहता है प्राणी, ऊंधा लटका है, और जिस झिल्ली में ये पड़ा रहता है उसी झिल्ली के अंदर अपने ही शरीर का मल मूत्र होता है, फिर अपने ही शरीर के मल मूत्र के कीड़ों से अपने ही शरीर को वो खाते रहते हैं, और फिर माता के ही शरीर में पैक रहता है, वो दुर्गंधपूर्ण पेट के अंदर पड़ा पड़ा प्राणी दुख पाता है। उसमें आप कैसे उसको सुरक्षित रखते हो, फिर ये जन्म लेता है, फिर माँ से दूध मिलता है, फिर पलता है। आपकी तो जगह जगह कृपा रहती है, जल में जिलाने की शक्ति, वायु में श्वसन शक्ति, अन्न के अंदर हमारे शरीर की शक्ति, सब आप शक्तियां देते हैं, लेकिन हम उसके बदले में क्या करते हैं महाराज, आपको भूलते हैं। आप तो हमको यहाँ कितने आराम से रखते हो और हम आप ही का विस्मरण करते हैं। इसलिए महाराज समन संस्कृति, संसार का आवागमन है, इसका आप समन कर दीजिए और आपके अंदर हमारी अविरल भक्ति हो। अविरल भक्ति माने कभी भक्ति खंडित न हो। थोड़ा कोई अपने मन में भाव पैदा हो गया कि भाई इतने नाम जप करेंगे, इतने दिन करेंगे, कोई न कोई इच्छा से करेंगे उसके बाद छोड़ देते, ऐसा नहीं महाराज। अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयो हरिधाम। भगवान ने उसके मरने पर अपने हाथ से उसकी क्रिया की। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब उसकी अंतिम क्रिया की तो भगवान ने कहा कि देखो मैं अपने पिता को तो अंतिम क्रिया में अपने हाथ से जलांजलि नहीं दे सका, तिलांजलि नहीं दे सका, आज आपको मैं पिता समझ करके आपका अग्नि संस्कार करता हूँ। निज कर की नीराम। बोलते बोलते हमारे शंकर भगवान मुग्ध हो गए। सुनो पार्वती सुनो, कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान बहुत कोमल चित्त वाले हैं, बिना कारण दया करने वाले। ये गीत तो वैसे ही बहुत खराब अपवित्र माना जाता है। गीद अदम खग ये पक्षियों में सबसे अधम है, और सड़ा गला मांस कितना ही सड़ा गला हो गीद उसको भी खा जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि गिद्ध दृष्टि, इस आदमी की दृष्टि कैसी, गीद जैसी दृष्टि है। गिद्ध दृष्टि, गिद्ध दृष्टि माने गीद जैसी। जैसे गीद की उड़ान तो बहुत ऊंची ऊंचा उड़ता है, लेकिन वो सड़ा गला कहीं मांस देखता है तो वापिस आकर के उसके ऊपर खाने लगता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन संसार के भोग पदार्थ देखते ही उनमें फंस जाते हैं। वो गीद की दृष्टि मानी जाती है, भागवत में भी आता है। यहाँ कहते हैं गीद अदम खग आमिष भोगी और गति दीनी जो जाजत जोगी। बड़े बड़े योगी लोग जिस गति को चाहते हैं उस गति को गीद महाराज ने प्राप्त किया। इसलिए हे पार्वती, वे लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, इस संसार में ऐसे भगवान भी रहते हैं और भोग भी रहते हैं। भगवान को तो छोड़ते हैं और भोगों को वो चाहते हैं। हरिता जी हो विषय अनुरागी। फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहां पर बहुत पशु थे, पक्षी थे, हाथियों की चिंगाड़ थी और जो है सिंहों का बड़ा भयंकर डरावना शब्द निकलता था। उसमें निर्भीक होकर के दोनों जा रहे थे, इतने में कबंद आ गया। कबंद माने धड़, आंख भी यही, नाक भी यही, मुंह भी यही, माथा था ना इसके अंदर धस गया, और ये पैर थे, ये पैर भी अंदर आ गए। और हाव बुझा उसकी लंबी, बहुत लंबी चौड़ी बुझा। राम जी महाराज को पता, सब पता है, लेकिन लीला करनी। राम और लक्ष्मण भी उसके घेराव में आ गए। तब राम जी महाराज ने उसको पकड़ लिया, उसके हाथ काट दिए। तब कबंद ने कहा, आप राम हो लक्ष्मण हो, अरे पिशाच राक्षस, हमको तो योगी लोग भी सीधे सीधे नहीं पहचान सकते, तू कैसे पहचान गया? तब कहा कि महाराज, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मेरी ये दशा हो गई, नहीं तो मैं पहले बहुत प्रबल, बड़ा श्रेष्ठ था और अच्छे मार्ग पर भी चलने वाला था। कोई अपराध हो गया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। एक बार इंद्र ने भी क्या किया कि इसके यूं माथे पर वज्र की लगाई, तो ये माथा था ये इसके अंदर चला गया, और पैर थे ये भी अंदर यूं आ गए। तब फिर कहा गया था, तेरी भुजा लंबी हो जाएगी, खाने पीने का साधन बैठ जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया और साथ में यह भी कह दिया कि भगवान तेरी भुजा को जब काटेंगे तेरा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु पद बेक ही मिटा सो पापा। तब भगवान ने कहा, देखो गंधर्व, मुझे जो ब्राह्मण के साथ द्वेष करता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए शरीर से, मन से, वाणी से ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। ब्राह्मणों को लोग यूं ही समझते हैं, ये ब्राह्मण क्या है, हमारे जैसे, यही फालतू ब्राह्मणों को चटा दिया। ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण के अंदर जो ब्रह्म शक्ति होती है, उस ब्रह्म शक्ति से हम शिव और ब्रह्मा सब बस में रहते हैं, सारे देवता बस में रहते हैं। इसीलिए तो ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं। भूदेव, भू माने पृथ्वी, उसके देव माने देवता। ब्राह्मण यदि कभी कोई कठोर शब्द भी कहे तो उसको सहन करना चाहिए। सापत, ताड़त, परुष, कहंता, विप्र, पूज्य, असगावी संता। इसलिए ब्राह्मण का कभी भी बराबरी में कठोर शब्दों से निरादर मत करो। वो कठोर शब्द बोलता है तो सुन लो, वो साप देता है, मारता पीटता भी है तो भी मार पीट खा लो, ब्राह्मण के सामने बराबरी मत करो। ब्राह्मण की सदा पूजा करो, चाहे उसमें शील गुण न हो तो भी पूजा करो। और शूद्र के अंदर कितने ही गुण हो, कितना ही वो ज्ञान की बात करे, कितना ही ज्ञान में प्रवीण हो तो भी पूजा मत करो। यहाँ प्रश्न पैदा होता है, आजकल के लोग कहते हैं कि ये क्या पक्षपात कर दिया गोस्वामी जी ने कि ब्राह्मण है वो शील गुणहीन है, आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं है तब भी उसका पूजन करो, और शूद्र है वो गुणों का समुदाय है, उसको खूब गुण है और ज्ञान में प्रवीण है लेकिन उसकी पूजा मत करो। क्यों साहब, गुणों की तो पूजा होती है। यदि ब्राह्मण में गुण ही नहीं है फिर ब्राह्मण का क्या करो, वो संध्या नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलता, कुछ नहीं होता, फिर उस क्या उसकी पूजा करें, कहाँ करें बताओ। अरे एक शूद्र है बेचारा, नीची जाति में जन्म ले लिया, नीचे जाति में जन्म लिया, कोई कसूर तो है नहीं, ब्राह्मण का तो कसूर है। ब्राह्मण ब्राह्मण हो करके सत्य आदि धर्म का पालन नहीं करता तो उसका कसूर है, और शूद्र का क्या कसूर है, बेचारा नीची जाति में जन्म हो गया, उसका क्या कसूर है। तो भी साहब उसकी तो पूजा करो मत और ब्राह्मण की पूजा करो। ये क्या मतलब है गोस्वामी जी महाराज का, क्या भाव है? भाव ये है कि पूजा किसकी होती है, ये देखो। पहले पूजा होती है शरीर की, शरीर की जो पूजा होती है तो शरीर ब्राह्मण का श्रेष्ठ है। और पूजा, पूजा में और श्रद्धा में अंतर है। पूजा होती है शरीर की और श्रद्धा होती है गुणों में। आपके अंदर अच्छे गुण है, शूद्र में अच्छे गुण है तो उसका उसका उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। भाई जी से एक बार किसी ने पूछ लिया, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौदार जी से, कि महाराज शूद्र ब्राह्मण के समान हो सकता है क्या? तो भाई जी ने कहा कि शूद्र है वो ब्राह्मण का भी आदरणीय हो सकता है। तुम तो ब्राह्मण के समान पूछते हो, हम तो कहते हैं कि शूद्र है वो ब्राह्मण से भी ज्यादा आदरणीय हो सकता है। क्यों? ब्राह्मण भी आदर करे। शूद्र है वो भगवान का भजन करे तो ब्राह्मण भी, अरे अमुक आदमी क्या कहना भाई, बहुत अच्छा भजन करने वाला, हमारी तो भाई उसमें बड़ी श्रद्धा है। तो नीच जात का भी हो गया तो क्या हुआ, यदि वो भगवान में लगा हुआ है और उसमें श्रेष्ठ गुण है तो ब्राह्मण के द्वारा श्रद्धा का पात्र बनेगा, आदर का पात्र होगा। लेकिन पूजा होती है ना वो शरीर की होती है, जैसे टीका लगाना, चंदन लगाना और अक्षत लगाना, नमस्कार करना, चरण छूना, ये ब्राह्मण के ही होती है, ब्राह्मण का ही शरीर पूजनी। क्यों? इसके लिए ये बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण है, तो जिसमें सत्व गुण की मुख्यता होती है उसको ब्राह्मण शरीर मिलता है। कर्म संस्कारों में जिसके अंदर सत्व गुण की मुख्यता होती है उसको ब्राह्मण शरीर मिलता है, और जिसमें रजोगुण गौण हो जाता है, रजोगुण गौण, सत्वगुण गौण होता है, रजोगुण प्रधान होता है। प्रधान यहाँ सत्वगुण प्रधान है, यहाँ रजोगुण प्रधान है। तो रजोगुण प्रधान और सत्वगुण गौण तो वो क्षत्रिय होता है, और तमोगुण प्रधान और रजोगुण गौण वो होता है ये वैश्य होता है, उसमें तमोगुण की प्रधानता। शूद्र होता है उसमें केवल तमोगुण बहुत ज्यादा छाया रहता है, तो ये तमोगुण होता है। अब इसमें शूद्र में भी दो प्रकार के शूद्र होते हैं, एक होते हैं सत्शूद्र, एक होते हैं असत्शूद्र। माने अच्छे शूद्र और थोड़े निम्न स्तर के शूद्र। अच्छे शूद्र वो होते हैं जिनका पानी ब्राह्मण भी पीवे तो कोई दोष नहीं लगता, और असत शूद्र वो होते हैं जिनके आपस में भी एक दूसरे का पानी नहीं पीते। तो ये महान तमोगुणी होते हैं, असत शूद्र होते हैं वो। तो पूजा होती है वो शरीर की, और शरीर में भी सत्व गुण की पूजा होती है। ब्राह्मण का शरीर भाई सत्व प्रधान है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण यदि कोई बुराई करता है तो उस बुराई को हम आदर्श मान लें, ये बात नहीं है। और शूद्र यदि कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा न कर सकें या उसका अनुकरण न करें, ऐसी बात नहीं है। केवल पूजा तक ये बात सीमित है। इस प्रकार से भगवान ने कबंद को ये बात कही, ताई कही निज धर्म ताई समझावा और निज पद प्रीत देखी मन भावा। भगवान ने उसको उसकी गति प्रदान कर दी और फिर जो है वो अपने लोक में चला गया। भगवान को प्रणाम कर गए, गगन आपनी गति पाई और ताई दे गति राम उदारा। ध्यान देवे इस प्रसंग में कि उस कबंद को सदगति प्रदान की, ब्राह्मणों की महिमा गाई और शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी के आश्रम में आए। अब भगवान से कहे, महाराज आप शबरी शबरी तो शूद्र है, उसके घर में क्यों आए? और इतने इतने ऋषि मुनि ब्राह्मण यहाँ थे, उनके घर में उनके आश्रमों में क्यों नहीं गए? जब आप एक तरफ ये कहते हो कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य सगावई संता पूज्य विप्रशील गुणहीना सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा, इतनी ब्राह्मणों की महिमा गाई तो फिर जो है आप शबरी के आश्रम कैसे आए? ताई देई गति परम उदारा, यहाँ आदि चौपाई में ये काम हुआ, शबरी के आश्रम पर उधारा, शबरी के आश्रम में आए, तो आप ब्राह्मणों के यहाँ क्यों नहीं आए? शबरी के यहीं क्यों गए? तो क्यों? इसका उत्तर भगवान इसी में आगे दे देंगे कि मानव एक भक्ति कर नाता, मैं भक्ति। अब ये वर्णाश्रम की बात थी, जैसा जो अधिकारी होता है उसके साथ भगवान वैसे ही उपदेश का व्यवहार करते हैं, परंतु भगवान अपनी ओर से भक्ति की मुख्यता को सामने रखा करते हैं। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम में आए भगवान, सबरी के आश्रम पगुधारा और सबरी देख राम गृह। अरे राम जी मेरे घर में आए, मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था कि देख सबरी अब मैं तो जा रहा हूँ, राम जी अभी चित्रकूट में बैठे हुए हैं, तेरे आश्रम में जरूर आएंगे। सबरी थी ना, ये बहुत कुरूप थी, बताते हैं इसके दांत ये आगे निकले हैं और इधर के दाढ़े ही आगे निकली हुई, जैसे कोई राक्षसी सी होती है। ये बड़ी सीधी बड़ी सरल। शबरी का जब विवाह हुआ था तब उसका पति उसको लिए जा रहा था, तो देखा पति ने देखा कि मेरी पत्नी का मैं रूप तो देखूं कैसा रूप है, तो उसने घूंघट उठा के देखा तो डर गया भाई, हाँ घबराया और वहां से दौड़ गया जाकर कह रहे भाई मैं तो ऐसी ऐसी को अपनी स्त्री रखूंगा ही नहीं। ऐसी थी शबरी, कुरूप डरावनी। अब शबरी बिचारी क्या करे, माँ बाप ने तो भेज दिया, पति ने त्याग दिया, वो बिचारी इधर उधर भटकती रही और भटकते उसने कहा क्या करूं किधर जाऊं, माँ बाप ने तो मुझे भेज दिया और पति मुझे स्वीकार ही नहीं करे। तो पास में देखा कि यहाँ कोई आश्रम है, वहां आश्रम देखा वो मतंग ऋषि का आश्रम था, मतंग ऋषि के आश्रम में गई, वो जाकर संतों के सामने रोने लगी, महाराज मैं तो अनाथ हो गई। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा भगवान के रहते हुए कोई अनाथ थोड़ी हो सकता है, सबके मालिक भगवान है, अनाथों के नाथ भगवान है। कि महाराज मैं तो भगवान को जानती नहीं। कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पास में कुटिया बनाओ, भगवान का भजन करो और चित्रकूट में अभी भगवान आए हुए हैं, अब मेरा तो शरीर चला जाएगा भाई और जो है मेरे शरीर के चले जाने के बाद राम जी इधर आएंगे और तुम्हारे आश्रम में जरूर आएंगे। तो महाराज मैं कैसे पहचानूं उनको कि देखो तुम, मैं बताऊं वैसा वैसा ध्यान करते रहो, ऐसे भगवान के नेत्र हैं, ऐसे भगवान के कपोल हैं, ऐसे भगवान के स्कंद हैं, और यहाँ एक धनुष है, और यहाँ कमर पर एक डोरा बंधा हुआ तुणीर है, तुणीर उससे दो जगह से बंधा हुआ रहता है, पीछे तुणीर रहता है, और ऐसे कोमल स्वभाव वाले, ऐसे सुंदर आंखों वाले भगवान का पूरा वर्णन किया। सबरी ने उनका सब वर्णन सुनकर के ध्यान किया। ऐसे सबरी को मतंग ऋषि ने ये भी कह दिया कि देख सबरी, उनकी प्राण प्रिया सीता की खोज करने के लिए तुम सुग्रीव का समझ, सुग्रीव के पास पहुंचाने के लिए बोल देना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी। तुम उनको इतनी बात बोल देना, वो सीता को खोजते खोजते आएंगे, और उनको ये बोल देना कि भाई जो है ये सुग्रीव के साथ मित्रता करो, राम जी के दर्शनों के बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से मतंग ऋषि ने सबरी को आश्रय दिया। सबरी एक जगह रहने लगी। अब ऋषि मुनियों की मंडली थी वो सबरी से बड़ी घृणा गई, हमारे यहाँ अधम जाति की तुम कहां से आ गए। फिर किसी ने कहा, अरे मतंग ऋषि की शिष्या है, मतंग ऋषि की पुत्री है ये, तो अरे अच्छा 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 ठीक, सब आदर करने लग गए। वो क्या करती कि ऋषि मुनि आते तालाब के पास, रास्ता सब साफ कर देती थी। जितने ऋषि मुनि आते भाई, रोज ऋषि मुनि आएंगे, रास्ता साफ करो, और अपने घर की तरफ से कोई रास्ता जाता उस रास्ते को रोज साफ करती, क्या पता आज भगवान आ जाए, क्या पता अब आज भगवान आ जाए, क्या पता आज भगवान आ जाए। इतना सबरी के मन में भगवान के लिए प्रतीक्षात्मक साधन था, ये प्रतीक्षात्मक साधन, भगवान जरूर आएंगे, भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान अब आ रहे हैं, गुरु जी के वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकते, ऐसे उसके मन में दृढ़ विश्वास और भगवान की बड़ी प्रतीक्षा थी। तो ऐसी प्रतीक्षात्मक भक्ति मतंग ऋषि की कृपा से सबरी में ही आई, दूसरे जितने ऋषि मुनि थे ऐसी उनके अंदर भक्ति नहीं थी। तो ताई देई गति परम उदारा, और सबरी के आश्रम पगुधारा, भगवान सबरी के आश्रम में आए। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी ने देखा अरे मेरे घर में राम जी आ गया हो। अब देखो राम जी आए, देखा तो था नहीं, कैसे पहचान लिया कि जो मन में मतंग ऋषि ने ध्यान के द्वारा हमारे हृदय में बैठाया था वो रूप उन्होंने देख लिया। और मुनि के वचन समुझ जिए भाई, अब ऋषि मुनि के वो वचन थे, मतंग ऋषि के वचन मन में बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। क्या भगवान का सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरवन माला, श्याम गौर सुंदर दौ भाई, और सबरी परी चरण लपटाई, ऐसा जो स्वरूप था वो रूप देखा, जो ध्यान में था वो सामने देखा। सबरी से कुछ कहा ही नहीं गया, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार बड़ा बोला ही नहीं जाए। और फिर जल लेकर के आई, उनके चरणों को धोई, और फिर अंदर ले जा करके सबरी ने बड़ी श्रद्धा से उनको और जो है बैठाया, और कंदमूल फल था, वो कंदमूल फल जैसा भी उसके पास था, सुरस आती बहुत सुंदर उसमें रस था। क्यों जी, सबरी के यही रस था, और कहीं नहीं, और कहीं सुरस नहीं आया है। सरस आया होगा, सुरस नाम नहीं आया। सुरस, सरस में और सुरस में क्या अंतर है? सरस माने रस युक्त, और सुरस यानी अत्यंत अंदर मिठास, सु माने श्रेष्ठ, जिसमें रस अंदर मिठास क्या है, भक्ति का है, प्रेम का है। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, बार बार भगवान उसका बखान करते हैं और जो है बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि वो सबरी ने फल दिया, एक फल है ना लक्ष्मण जी ने भी लिया यार, खाता खाता लक्ष्मण जी ने उसको फेंक दिया है उत्तर की तरफ, वहां पास में फेंकेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, उत्तर की तरफ फेंका अच्छा नहीं लगा, क्या खाता है। राम जी बारम्बार बखान, अरे बहुत मीठा है रे, अरे बहुत मीठा है रे। और वही लक्ष्मण जी की जब शक्ति लगी ना तो वही गुठली जाकर के मृत संजीवनी लता बनी और वही आकर के लक्ष्मण जी को जिलाने वाली बनी। ये सब बातें भगवान ने बाद में लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुमने हमारी सबरी का अपमान किया था ना, इसलिए आपके ये शक्ति बाण लगा और फिर जो है उसी ने ही आपको संजीवनी प्रदान की। हमने देखो बड़े प्रेम से उसका खाया, इतने शस्त्र हमारे लगे, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान कभी अचेत नहीं हुए, कभी बेहोश नहीं हुए, क्यों कि भाई भगवान इस प्रकार से भक्तों के प्रेम भाव से दिए हुए भोजन को किए हुए थे। तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, खूब उन्होंने प्रशंसा की। और फिर भगवान के सामने बड़ी नम्रता से कहती है कि हे महाराज, मेरे पास तो कोई स्तुति के लायक स्तोत्र भी नहीं, मैं तो याद भी नहीं, मैं क्या आपको सुनाऊं, मैं तो बहुत अधम जाति की हूँ, मैं नीची स्त्री हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम 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 क्यों कहा कि देखो ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय, क्षत्रिय से अधम वैश्य, वैश्य से अधम शूद्र, तो अधम अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन वर्ण है ना एक एक से अधम, ब्राह्मण तो कभी अधम होता नहीं, इसलिए ब्राह्मण एक नंबर में ही ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय, क्षत्रिय से अधम वैश्य, वैश्य से अधम शूद्र, तो अधम अधम ते अधम और अधम अति नारी और तीन में मैं और मतिमंद अघारी, ऐसा हूं महाराज, ऐसी मैं हूं, मेरे यहाँ आप पधार गए महाराज, ओहो कैसी कृपा हुई। भगवान ने कहा अरे भामिनी, हे भामिनी माने श्रेष्ठ स्त्री, बहुत उच्च कुल की स्त्री होती है वो भामिनी, हे भामिनी मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, ये जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई ये सब चलते हैं संसार में, मेरे और भक्त के बीच में ये चीजें खत्म हो जाया करती है। भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा, ये बिना जल का बदल आता है ज्यादा है कुछ नहीं, उसकी कोई महिमा नहीं, ऐसे ही जात पात कुल धर्म की कोई महिमा नहीं होती। तुम्हारे अंदर नौ प्रकार की भक्ति है, पहली भक्ति यही मैं तुमको सुनाता हूँ, देखो उसको बिचारे को कुछ पता ही नहीं है। पहली भक्ति तो है संत महात्माओं का संग करना, तुमने मतंग ऋषि का संग किया। दूसरी है मेरी कथा को सुनना, तो मतंग ऋषि से तुमने कथा सुनी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान गुरु महाराज की सेवा करी, तुमने मतंग ऋषि की सेवा करी। और चौथी भक्ति यह है कि मेरे गुणों का निष्कपट भाव से गान करना जो तुम करती हो, और मेरे नाम का जो जप है, ये पांचवी भक्ति, नाम जपो लेकिन मम दृढ़ विश्वास आ, नाम के अंदर विश्वास होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं नाम तो राम राम तो लेवा पर कोरो राम राम ही करा और तो कहीं हुआ को नहीं, अरे कोरो राम राम नहीं है माजी, और राम राम तो बहुत ऊंचो है, इन ऊपर आप विश्वास जी तो कम है नी, इतनी आपने देरी हो रही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पर नहीं नाम पर विश्वास रखो, नाम पर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवा भजन है। और छठा भजन क्या है, इंद्रियों का दमन रखो और ये बात से प्रपंच काम काज से अपना एकदम हाथ जोड़ो और बैठ करके घर में बैठ करके भजन करो। ये कामकाज को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि स्वरूप से छोड़ दो, छोड़ने का अर्थ क्या है, घर में दूसरे कामकाज करने वाली पीढ़ी तैयार हो गई, 50 वर्ष का पुरुष हो जाए, 40 वर्ष की माई बाई हो जाए, बस फिर बैठ करके भगवान का भजन। अब दूसरे लोग आ रहे हैं, बस वो अपना काम करें, अपना बैठ करके भजन करो। सातवीं भक्ति यह है कि सारे संसार में मेरा ही स्वरूप देखो और संत महात्माओं को मुझसे भी ज्यादा आदर दो। आठवीं भक्ति है कि जो मिले संसार में, जो मिले, जहां मिले, जितना मिले, जैसा मिले, उसमें संतोष रखो। आज हमको संतोष नहीं हो रहा है, ये बड़ी भारी हमसे त्रुटि होती है। खूब संतोष रखो, किसी में भी दोष मत देखो। और मेरा भरोसा रखते हुए नवमी भक्ति बताते हैं, सबके साथ में सरलता का, छलहीनता का व्यवहार करो। सात, ये नौ भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके होती है वो अतिशय प्रियमा, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। सबरी सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे में तो नौ प्रकार की भक्ति है। अब देखो भगवान की कृपा देखो, तेरे में नौ प्रकार की भक्ति है, उसको पता ही नहीं। मेरे में कौन सी भक्ति है कुछ पता नहीं। मेरा फल बड़ा फल देने वाला होता है, परम फल है, परम फल देने वाला होता है, उससे जीव को आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। ये तो बता दी मैंने मेरी बात। अब एक बात बताओ भामिनी, वो करवर गामिनी जनक सुता कहाँ है? हाथी के समान चाल चलने वाली सीता का पता बताओ। अब भगवान से कहे महाराज, इस शबरी के अंदर छिपी हुई नौ भक्ति का तो आपको ज्ञान, आपने अब सीता जी का ज्ञान पूछ रहे हैं आप। जिसका ज्ञान किसी को होता नहीं है, वो ज्ञान तो आपने कर लिया। क्या आपको सीता का ज्ञान नहीं है क्या? पर शबरी को महत्व देना है, शबरी को बड़ाई देनी है और शबरी के द्वारा गुरु आज्ञा का पालन करवाना है, गुरु महाराज के वचनों का अनुसरण करवाना है। इसलिए सर्वज्ञ होते हुए भगवान ने पूछा, पंपा सरई जाओ रघुराई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। देखो महाराज, हे रघुनाथ, आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाओ, वहाँ आपका सुग्रीव के साथ मिलन होगा, आप सुग्रीव के साथ मित्रता कर लेना और वो सुग्रीव आपका सब काम पूरा कर देगा। ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, जानत हूँ पूछो मति धीरा, सब जानते हैं आप, लेकिन मुझसे आप पूछ रहे हैं महाराज, आपकी बड़ी भारी कृपा है। बार बार उसने चरणों में प्रणाम किया, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, कैसे हमारे मतंग ऋषि ने बात की सब सुना दिया और उनके हृदय में भगवान का प्रेम छा गया। उस प्रेम के अंदर ही उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर वहीं पर समाप्त कर दिया और वो भगवान के दिव्य धाम में चली गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अरे मनुष्य, ये क्यों व्यर्थ के प्रपंच में पड़ा है? क्यों इस मानव शरीर को प्राप्त करके अधर्म में पड़ा है? क्यों पाप बटोर रहा है? तुमको आगे जाकर बहुत बड़ा भारी शोक मिलने वाला है, इसलिए सब त्याग हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। और विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। भगवान पर विश्वास करो और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाओ, सारा प्रपंच छोड़ करके इस एक काम में ही लग जाओ। शबरी का उदाहरण सामने रखो, जो जाति से हीन थी और पापों की जन्म भूमि थी, अघ जन्म मही, ऐसी नारी को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। अरे ए मन, तू कितना मूर्ख है, ऐसे संसार में तू सुख ढूंढ रहा है भगवान को छोड़ करके। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। इस संसार की तरफ, संसार में एक तरफ संसार का सुख है और एक तरफ भगवान है, तो किसको चाहता है? अरे मन, भगवान को छोड़कर क्यों सुख के पीछे लपलपाता है? इस प्रकार से भगवान ने उनको सदगति प्रदान दी और आगे भगवान रवाना हो गए।
राम जय सीता राम,
जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता। सीताराम
जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम
सियावर रामचंद्र
की जय
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय
भक्तवत्सल भगवान
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
आनंद कंद भगवान
की जय
जय जय, जय।